दिन भर 25 अप्रैल दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। राजनाथ सिंह ने कहा, माओवादियों के खिलाफ सरकार की नीति की समीक्षा होगी।
अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कार्रवाई है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
जानने की कोशिश होगी कहाँ से मिलती है प्रेरणा गोरक्षकों को और क्या है इनकी सोच।
कई जगह पे लोग गाय को रखने की जगह नहीं है, जमीने नहीं है तो कहाँ रखें, इसलिए काटना सही है, उनका तर्क मोस्टली ये होता है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कल हुए नक्सली हमले के बाद आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल जवानों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। गृहमंत्री ने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए जो नीति है उसकी समीक्षा के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों की 8 मई को बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद केंद्र सरकार चुप नहीं बैठेगी। कल सुकमा में सीआरपीएफ के एक दल पर नक्सली हमले में 26 जवानों की मौत हो गई थी। उत्तर कोरिया आज अपने सेना का 85वां स्थापना दिवस मना रहा है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि इस मौके पर उत्तर कोरिया ने बड़े पैमाने पर फायरिंग ड्रिल की है। दक्षिण कोरिया के सेना अधिकारियों के मुताबिक वॉनसेन के इलाके में काफी सैनिक साजो सामान तैनात किया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति पर चर्चा के लिए 100 अमरीकी सेनेटरों की बैठक बुलाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उत्तर कोरिया दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। दक्षिण कोरियाई नौसेना ने भी अमरीकी लड़ाकू जहाजों के साथ सैन्य अभ्यास किया है। दक्षिण कोरियाई सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल जुंग सुंग हो ने इस बारे में ये जानकारी दी। ये फायरिंग कोरियाई गणतंत्र और अमरीकी गठबंधन और साझा सैन्य अभ्यास को मजबूत करने का मौका है। भविष्य में कोरिया और अमरीका के साझा सैन्य सहयोग से हम देश की सुरक्षा कर सकेंगे। ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल जुंग सुंग हो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में आज 4 लोगों को फांसी दे दी गई। इन सभी को सैन्य अदालतों से सजा मिली थी। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चारों को खैबर पख्तूनख्वा जेल में फांसी की सजा दी गई और ये सभी लोग पाकिस्तान तालिबान के सदस्य थे, जो सुरक्षा बलों और आम लोगों पर हमलों के दोषी थे। पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल पर हमले के बाद सैन्य अदालतों का गठन किया गया था और इन सैन्य अदालतों की पारदर्शिता पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तरी सीरिया में तुर्की के हवाई हमलों में कुर्द YPG पार्टी के 18 सदस्यों की मौत हो गई है। वहीं अंकारा का कहना है कि YPG को तुर्की में प्रतिबंधित PKK से जुड़ा हुआ एक संगठन है, लेकिन YPG को सीरिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमरीका का समर्थन हासिल है। तुर्की के लड़ाकू विमानों ने इराक की सीमा पर भी हमले किए हैं। तुर्की की सेना का कहना है कि उनका निशाना PKK पर है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक सिंजर में हुए इस हमले में इराकी कुर्दिस्तान के सुरक्षा बलों के 6 सदस्यों की मौत हो गई है। सीरियाई कुर्दों के राजनीतिक संगठन PYD के ब्रितानी प्रतिनिधि डॉ एलन सेमो ने बीबीसी को यह बताया।
दिस इज नॉनसेंस आर्गुमेंट, सिंजर इज अ फार फार अवे।
तुर्की का तर्क बेवकूफाना है। सिंजर तुर्की की सीमा से 50 किलोमीटर दूर है और इसका नाम लेना बेकार है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ये थे डॉक्टर एलन सेमो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गृह युद्ध झेल रहे यमन पर हो रहे एक सम्मेलन में मदद देने वाले देशों को बताया है कि युद्ध के कारण यमन में एक पूरी पीढ़ी भुखमरी और बेगारी की कगार पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि हर 10 मिनट पर 5 साल से कम उम्र का एक बच्चा मर रहा है और ये मौतें ऐसे कारण से हो रही हैं जिसे टाला जा सकता है। 2 साल से चल रहे युद्ध के कारण यमन में सूखे की स्थिति बन गई है। फरवरी में संयुक्त राष्ट्र ने अपील की थी कि यमन के लिए 2 अरब डॉलरों की जरूरत है, जबकि अब तक सिर्फ 15% ही जुटाया जा सका है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करके रेहान फदल का। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि माओवादियों के खिलाफ सरकार की रणनीति की समीक्षा की जाएगी और जरूरत हुआ तो इसमें बदलाव भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों के हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 25 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज रायपुर पहुंचे थे। इधर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने फिर दोहराया है कि सुकमा में माओवादियों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
सोमवार को सुकमा में माओवादियों के हमले में मारे गए सीआरपीएफ के 24 जवानों के शव सोमवार की रात ही रायपुर लाए जा चुके थे और सुबह इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली से गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर रायपुर पहुंचे। बाद में राजनाथ सिंह ने राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक में भाग लिया और मीडिया से बातचीत की।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर उसी का यह परिणाम है और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कार्रवाई है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि माओवादियों के मामले में केंद्र सरकार अपनी नीति की समीक्षा करेगी।
हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सुकमा में माओवादियों के खिलाफ देश की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है।
मैं मानता हूं कि सुकमा की लड़ाई इस नक्सली पूरे देश के आंदोलन की सबसे बड़ी लड़ाई है और इस पूरे मामले में हमने भी तय किया कि उस इलाके में एक्टिविटी और बढ़ाई जाए, वो चाहे निर्माण कार्य हो चाहे वहाँ के ऑपरेशन हो।
रमन सिंह के इन दावों के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से इस्तीफा मांगा है। इधर बुधवार को बस्तर के सामाजिक संगठनों ने बस्तर बंद का आह्वान किया है। दूसरे राजनीतिक दल भी राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन की तैयारी में हैं। मतलब साफ है कि अभी सुकमा हमले की गूंज कुछ दिन राजनीतिक गलियारे में तेज बनी रहेगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
हमारे साथी सलमान रावी रायपुर के बालाजी अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने सुकमा हमले में जख्मी हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल लच्छू ओराय से बात की।
आज मेरे साथ यहाँ रायपुर से छत्तीसगढ़ के, जहाँ पर आपको पता है कि कल बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ था जिसमें 25 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और इस वक्त इस हमले में 6 लोग घायल भी हुए थे। जो जवान 3 रामकृष्णा अस्पताल में हैं, 3 इस अस्पताल में हैं, अभी इनको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा है। लक्ष्मण उरांव जी, आप उस वक्त में क्या कर रहे थे ये बताइए आप। अब चोट कैसी है आपकी, तकलीफ अभी भी है या पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं?
चोट तो अभी भी है।
पहले से बेहतर फील कर रहे हैं?
हाँ, पहले से थोड़ा आराम है पहले से।
ये हुआ क्या था ये बताइए आप, कैसे अचानक हमला हुआ?
अचानक वो लोग को पहले से प्लान थी,
ये एम्बुश लगा के बैठा
हुआ। हाँ, एम्बुश लगा के पहले से ही हरकत हो रही थी लोग की, फिर बाद में हम लोग बैठे हुए थे।
तो मतलब आपके ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद फिर कैसे आपने सामना किया ये बताइए।
देखिए, मेरे सामने सारे जवान थे तो मेरे पास ग्रेनेड गिरी तो सभी जवानों को लगी, मेरे को नहीं लगी। तो मैं
मतलब ग्रेनेड का जो स्प्लिंटर है वो
मेरे को हाथ में लगी और सभी जवानों को भी लगी, उन लोग को ज़्यादा लगी, मेरे को लग नहीं पाई ज़्यादा, खाली वो केवल हाथ में लगी। तो मेरा एक हाथ कंडम होगी। फिर मैं वहाँ से राइफल लिया, फिर मैं दूसरे कंपनी बैंकर के पास पहुँचा, बैंकर पे पहुँचा, फिर वहाँ से कंपनी को लेके फिर इधर आया कि वहाँ मेरे जवान वहाँ पड़े हैं, फिर लेकर आया। तब तक मैं बेहोश हो गया, तब तक फिर मेरे को बैंकर में बैठा के कैंप ले गया। बेस
आपने भी गोलियाँ चलाई थी?
हाँ, मैंने।
कितने राउंड आपने फायर किए होंगे?
मैंने बहुत राउंड फेंक दी, गिनती नहीं है।
और उधर से कैजुअलिटी हुई है आपकी गोली चलाने की वजह से?
बस फिर नक्सली विवेक के जो हम लोग को मार रहा था उसको मैं मारते हुए मैं भागा, फिर मेरे पीछे इतना गोली चली, नक्सलियों ने बहुत चलाया मेरे पीछे, जब तक मैं बैंकर तक पहुंचते तक बहुत चलाया उसने।
आप कब से पोस्टेड हैं छत्तीसगढ़ में?
मेरे 4 साल हो गए।
4 साल में ये पहली बार इस तरह का एनकाउंटर हुआ या पहले भी आप?
नहीं, पहले भी मैं बहुत।
किस इलाके में ज्यादा?
कौशलपाड़ा में भी था, रामाराम में भी था, पिटमेल में, सभी में।
लेकिन इतना बड़ा एनकाउंटर, ये इतना बड़ा एम्बुश, ये पहली बार?
उस समय कौशलपाड़ा में भेजा ही हुई थी लेकिन उसमें हम लोग साइड में नहीं हो पाए। बस सर, अभी मैं इतना ही बोलूँ।
अभी डॉक्टरों ने क्या कहा आपको? ऑफिसर आए थे, डीजी साहब ने क्या कहा?
उसने बोला ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं।
आपके घर वाले सब
वो तो बेचारे अभी तो बहुत सहमे हुए होंगे, बहुत घबराए हुए होंगे। आए मिलने के लिए?
आने के तो आते, लेकिन मैंने बोला कि ऐसे कोई बात नहीं है।
कहाँ के रहने वाले हैं?
मैं झारखंड के रहने वाला।
झारखंड में कौन सा जिला?
गुमला डिस्ट्रिक्ट।
गुमला। और सीआरपीएफ में कब से हैं?
मैं 11 से हूँ।
तो डीजी सीआरपीएफ ने आपसे बात करके कहा है कि जो घायल लोग हैं उनको ब्रेवरी का अवार्ड वगैरह के लिए कुछ रिकमेंड करने की बात कही है, कुछ आपसे आश्वासन दिया है, शाबाशी दी है उन्होंने आके?
बस शाबाशी दी उन्होंने।
और कुछ कहा उन्होंने?
इसी तो कुछ नहीं, बस शाबाशी दी।
मैं एक चीज़ और जानना चाहता आपसे कि आपकी पोस्टिंग और भी जगहों पर रही है कश्मीर वगैरह में?
मैं जम्मू में था, जम्मू के बाद में सीधे यहाँ छत्तीसगढ़।
तो वो ज्यादा खतरनाक इलाका है या ये ज्यादा खतरनाक है?
ज्यादा खतरनाक तो यही है,
छत्तीसगढ़ ज्यादा खतरनाक है। तो सुना आपने कि ये कह रहे हैं लचू उराव के छत्तीसगढ़ जो है ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत जम्मू कश्मीर की पोस्टिंग की, क्योंकि ये वहां पर भी तैनात थे लेकिन इस तरह का माहौल वहां पर इन्होंने पहले कहीं नहीं देखा था। और इस बार 4 साल के दौरान में इन्होंने जितने एनकाउंटर्स देखे हैं वो शायद इन्होंने अपनी पूरी करियर में, अपने पूरे करियर में नहीं देखा था। सलमान रावी, बीबीसी रायपुर।
जैसा कि आपने सुना, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने नक्सली हमले को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और हम रणनीति की समीक्षा करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले सरकार से पूछ रहे हैं कि आपकी कोई रणनीति है भी? बीबीसी संवाददाता सुबह रहमत की रिपोर्ट।
सोमवार को सुकमा में हुआ हमला पिछले 7 सालों में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ये 3 घंटों तक जारी रहा। अभी पिछले महीने ही इसी इलाके में एक और हमले में सीआरपीएफ के 11 अर्धसैनिक मारे गए थे। इस साल मार्च के अंत तक 80 अर्धसैनिक मारे जा चुके हैं। केंद्रीय सरकार के लिए ये हमले बड़े झटके हैं, क्योंकि सरकार ने दावा करना शुरू कर दिया था कि माओवादी हिंसा की वारदातों में भारी कमी आई है। लेकिन अब घातक हमलों के बाद सरकारी दावों पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के लीडर टीएस सिंहदेव कहते हैं कि सरकारी दावे केवल दावे ही हैं।
दावा ही है, और एक मनोवैज्ञानिक पहल के तहत ये कहा जाता है कि हमने कंट्रोल कर लिया है। सच्चाई ये है कि स्थिति अभी भी बनी हुई है और गंभीर रूप में बनी हुई है।
आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इलाके के दौरे के समय कहा कि सरकार रणनीति की समीक्षा करेगी, लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि माओवादियों को लेकर सरकार की कोई रणनीति है भी या नहीं। अर्धसैनिक बल बीएसएफ के पूर्व प्रमुख प्रकाश सिंह के मुताबिक नहीं।
मेरी जानकारी में तो अभी राष्ट्रीय स्तर पे कोई नीति नहीं बनी है। हालांकि कुछ महीने पहले श्री राजनाथ सिंह जी ने यह बयान दिया था कि माओवादियों से निपटने की नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है, पर वो मसौदा कोई सामने आया नहीं, कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं है। अगर गोपनीय कोई डॉक्यूमेंट हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ।
गृह मंत्रालय में एक खास महकमा है जिसका काम ही माओवादी गतिविधियों पर नजर रखना है और रणनीति तय करनी है। इसके वेबसाइट पर माओवादियों के लिए बनी रणनीति को स्पष्ट किया गया है। वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने 4 बातों का ध्यान दिया है: स्थानीय लोगों की सुरक्षा, इलाके का विकास, स्थानीय लोगों के अधिकार और सार्वजनिक धारणा को मैनेज करना। राजनीतिक विश्लेषक अजय साहनी के मुताबिक सरकार की नीतियों के कारण माओवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। उन्हें दोबारा बसाने की कोशिश भी की जा रही है।
इनका जो इलाका था, इनके डोमिनेंस का एक जमाने में बात होती थी, 223 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे इनका कहीं कोई ना कोई
इन्फ्लुएंस है।
तो अब ये है कि सुकड़ के वो तकरीबन 100 डिस्ट्रिक्ट 120 डिस्ट्रिक्ट में रह गए हैं, और वहाँ भी जो हाईली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं वो मुश्किल से 30-35-36 बचे हैं।
लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर कहती हैं कि सरकार की नीतियां जमीन पर नजर नहीं आती। उनके अनुसार इन हमलों को बंद करने का एक ही तरीका है, और वो है बातचीत का रास्ता।
पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल विजन दोनों की कमी है। और जिस तरह जैसे अब ये सरकार कह रही थी कि डिमोनेटाइजेशन से माओइस्ट खत्म हो गए, अब ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात है कि डिमोनेटाइजेशन से कोई भी गुरिला आर्मी इस टाइप का खत्म हो जाएगा। द ओनली वे इज पीस टॉक्स एंड डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इसको
श्री सिंहदेव नंदिनी सुंदर से सहमत हैं। वो कहते हैं,
एक भी उदाहरण आप इतिहास में बता लीजिए, मानव इतिहास में देख लीजिए कि अगर युद्ध हुए हो तो युद्ध का अंत बिना चर्चा के या वार्ता के हुआ हो, कौन सा युद्ध ऐसा हुआ है? तो बिना चर्चा के तो संभव ही नहीं है। आपको चर्चा तो करना पड़ेगा, संविधान के दायरे के अंदर आप चर्चा करिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता सिंहदेव ने कहा कि विपक्ष ने ये सारे सुझाव विधानसभा में दिए हैं। उनका कहना था कि समय कम है, इसलिए एक साथ कई कदम उठाने की जरूरत है।
कई बार इस बात को दोहराया जा चुका है कि मल्टी प्रॉन्ग्ड आपका अप्रोच होना पड़ेगा। सिर्फ चर्चा काम एक समय में नहीं करेगी, सिर्फ विकास के काम एक समय में नहीं करेगा, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रांगली आप कदम उठाइए वो एक साथ केवल एक चीज करिए संभव नहीं है।
गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर एक साथ कई कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। ऐसा लगता है सरकार के पास रणनीति है, जरूरत शायद इसको अच्छी तरह से लागू करने की है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने आतंकवाद के खिलाफ लंबी और मुश्किल लड़ाई में एकता की जरूरत पर जोर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार इमैनुअल मैक्रों और मरीन लपेन पिछले सप्ताह मारे गए एक पुलिसकर्मी की श्रद्धांजलि सभा में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ओला ने कहा,
C'est un combat de longue haleine que la France conduit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
ओला कह रहे थे, फ्रांस इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ विदेश और फ्रांस में लंबी अवधि की लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई लंबे समय तक चलेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक ये खतरा हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाता। ये एक मुश्किल लड़ाई होगी, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं कि जीत हमारी होगी, लेकिन हमें एकता और जिम्मेदारी से काम लेना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला के शब्द। और अब आज की विशेष रिपोर्ट। भारत में पिछले 2 वर्षों में शायद ही ऐसा कोई महीना बीता हो जिसमें किसी अखबार या टीवी न्यूज चैनल पर गाय से जुड़ी कोई खबर न दिखी हो। या तो खबर गोरक्षा से जुड़ी होती है या गाय की तस्करी से, अगर नहीं तो गोहत्या या गोमांस से जुड़ी। मुद्दा आज का नहीं, खासा पुराना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे चर्चा का विषय सा बन चुका है। आखिर कौन हैंगे गोरक्षक, उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है और क्या उन्हें भी डर लगता है? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने इस रिपोर्ट में।
दोपहर के 2 बजे पूर्वी दिल्ली के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुझे गोरक्षा पर सबक मिल रहे हैं। सबक देने वाले बड़ी शिद्दत से अपने आप को एक समर्पित गोरक्षक बताते हैं जो 10 साल पहले इस आंदोलन से जुड़े थे। हरियाणा के रहने वाले पवन पंडित अब दिल्ली में बस चुके हैं और करीब हर आधे घंटे पर इनके मोबाइल की घंटी बज उठती है और ये लोगों को गोरक्षा से जुड़ा ज्ञान देते हैं। सलाह देने के बाद पवन पंडित हमें बताते हैं,
इस नए भारत के प्रारूप में जब लोग बात करते हैं कि कई जगह पे लोग गाय को रखने की जगह नहीं है, जमीनें नहीं है, तो कहाँ रखें, इसलिए काटना सही है, उनका तर्क मोस्टली ये होता है। तो क्या फ्यूचर में अगर लोगों के रहने की जगह नहीं होगी और जो संभव भी है, तो क्या उनको भी इसी तरीके से उनके लिए भी स्लॉटरिंग हाउस बनाए जाएंगे, क्या उनको भी काटा जाएगा?
भारत में इन दिनों कहीं गो हत्या रोकने पर प्रदर्शन हो रहे होते हैं, कहीं चुनावी वायदों में गोमांस पर प्रतिबंध की बात और कहीं चुनाव जीतने पर बढ़िया गोमांस उपलब्ध कराने का भरोसा। इस बहस के बीच हिंसा भी हुई है और वो भी देश के कई हिस्सों में। 2015 में दादरी के रहने वाले अखलाक की जान गई, 2016 में ऊना में दलित युवकों की सरेआम पिटाई और 2017 के पहले हिस्से में अलवर जिले में पहलू खां को गाड़ी में गाय ले जाने पर जान गंवानी पड़ी। खुद प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री और नेता गोरक्षा के नाम पर हिंसा के खिलाफ बोले हैं, लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ा है ये बड़ी बहस का मुद्दा है। पवन पंडित के दफ्तर से करीब 8 किलोमीटर दूर एक मंदिर की बगल वाली गौशाला में 3 व्यक्ति गायों को गोधन कहकर ही संबोधित कर रहे हैं। इनमें से एक राष्ट्र प्रकाश हैं, जो पेशे से कारोबारी हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की गोरक्षा इकाई के उत्तर भारत प्रमुख भी हैं। मैंने पूछा, कई मामलों में कथित गोरक्षकों ने हिंसा भी की है, उसे तो सही नहीं ठहरा सकते। राष्ट्र प्रकाश ने कहा,
जो गो तस्करी करने वाले लोग हैं वो अपराधी लोग हैं, वो लैस होकर आते हैं, वो पिस्तल भी लेकर आते हैं, वो तलवार भी लेकर आते हैं, वो पत्थर भी लेकर आते हैं, और इसलिए जब गो रक्षक या गो सेवा करने वाले लोग उनके आड़े आते हैं तो वो उन पर हमला भी करते हैं और ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब भाई जेब कतरे को जब आदमी पकड़ता है, गलत काम करने वाले को पकड़ता है, जो भी गलत काम करता है, तो जब जनता उसको पकड़ती है फिर तो पहले तो पीटेगी उसको, अधमरा करेगी। अब कई बार ये भी होता है अधमरा करने में उससे आगे की स्थिति होती है, तो वो स्थिति ना हो। कई बार पुलिस अगर ठीक से कार्रवाई कर ले और पुलिस तुरंत एक्शन ले ले तो शायद ये स्थिति ना बने।
इस बीच कई राज्य सरकारों ने गो हत्या पर कानून सख्त किए हैं और कुछ राज्यों में बीफ के खिलाफ मुहिम भी चली है। अवैध बूचड़खानों और बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों पर लगाम कसी जाने का सिलसिला भी जारी है। कहीं से आश्वासन आ रहे हैं और कहीं से निंदा, लेकिन गाय के नाम पर हिंसा रोकने की गुहार भी आई है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भाषण में। सवाल ये भी है कि आखिर भारत में गोमाता आंदोलन का इतिहास कितना पुराना है और क्या इसकी कोई खास वजह रही है। मैंने बात की जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर डी एन झा से।
1882 में महर्षि दयानंद ने गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की थी, उसके बाद ही ये मूवमेंट चला। उनका पर्पस था कि जो हिंदुओं को गाय के बचाने के नाम पर एक साथ किया जाए, क्योंकि 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी तो उसमें हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े थे और अंग्रेज चाहते थे कि इनको अलग किया जाए दोनों को। तो जब अलग होने लगे तो इन्होंने इसको, दयानंद सरस्वती ने गाय को हिंदुओं का मसला बनाया। तो मतलब जो गौ माता का जो कंसेप्ट है वो तो 19वीं शताब्दी के आखिर का है, गौ माता उससे पहले तो थी नहीं।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और गो हत्या प्रतिबंध की मांग करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की राय प्रोफेसर झा से अलग है। स्वामी संसद में गो हत्या के खिलाफ कानून के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश कर चुके हैं और चाहते हैं कानून सारे देश में लागू हो। सुब्रमण्यम स्वामी,
जब बहादुर शाह जफर मान को बैठाया गया था दिल्ली के गद्दी में 1857 में, तो पहला कदम उन्होंने लिया कि गौ हत्या पर उन्होंने प्रतिबंध लगाए। हमारी जो संविधान बनी उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नेंस के लिए एक अनिवार्य है, उसमें उन्होंने इसको इंक्लूड किया है। जहाँ तक ये सवाल है, कोई नई हिंदुत्व के आधार पर हम लोगों ने उठाया है जो पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। ये प्राचीन काल से ये विषय होता था, हमें गांव की मान्यता थी। वो सिर्फ गांव के लिए नहीं थी, मयूर के लिए भी थी, पीकॉक, और उसको तो 1951 में ही उस पर प्रतिबंध लग गया था उसकी हत्या पर।
लेकिन प्रोफेसर डी एन झा इन दावों को खारिज करते हुए बताते हैं कि प्राचीन भारत में भी गोमांस खाने का रिवाज था और इतिहास में कहीं ये बात नहीं मिलती जब गो हत्या के लिए मृत्यु दंड जैसे प्रावधान का प्रमाण मिले। वैसे पूछे जाने पर सुब्रमण्यम स्वामी भी हिंसा की निंदा करते हैं।
देखिए, पहले तो जो कानून अपने हाथ में लेते हैं वो तो अपराधी हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये ऐसे तबका को सख्त कार्रवाई करके दबाना चाहिए।
लेकिन अपने को गर्व से एक समर्पित गोरक्षक बताने वाले पवन पंडित जैसे लोग इस बात के लिए दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं जब हिंसा करने या भड़काने के आरोप कुछ गोरक्षकों पर लगते हैं। मेरे मन में ये जानने की भी जिज्ञासा है कि गोरक्षकों को ये करते हुए डर नहीं लगता क्या? पवन पंडित को सुनिए।
अगर हम मर भी जाएंगे तो हम गलत नहीं कर रहे, ऐसा कुछ विश्वास है। जब आपके पास एक विश्वास होता है ना, उससे बड़ा हथियार दूसरा नहीं होता। और जब आपको एक प्रेरणा मिलती है कि आप किसी योगदान में जुड़े हैं, कहीं तो इंडोर्स होगा, किसी रूप में कुछ तो माना जाएगा, तो एक तरीके से पॉजिटिव आपका माइंडसेट बन जाता है और आप उसको कंप्लीट, उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़, मोस्टली लोग ये नहीं सोचते कि हम हार जाएंगे, मोस्टली लोग ये सोचते हैं हम उसको पकड़ लेंगे। जब ये आप सोचते हैं तो आपका डर पहले मर जाता है और सामने वाले को डर लगता है।
कुछ महीने पहले वरिष्ठ नेता शरद यादव ने संसद में पूछा था, इन गोरक्षकों को किसने बनाया, सरकार इन्हें बैन क्यों नहीं कर देती। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के मामलों के बढ़ने से भारत में अल्पसंख्यक समुदाय में थोड़ा संशय बढ़ा सा जरूर दिखा है। इतिहासकार प्रोफेसर डी एन झा इस पूरे आंदोलन को अफसोसनाक कहते हुए खारिज करते हुए बताते हैं,
कोई भी डिवाइडेड जो सोसाइटी है उसमें सोशल जस्टिस का होना मुश्किल तो होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई जानबूझ के इनजस्टिस करे। तो ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आप गाय को बचा सकते हैं, औरत को नहीं बचा सकते हैं। ये चीज़ जो है ये हम समझते हैं बिल्कुल गलत है, और इसको किसी आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है। ये जितने हैं ये लोग, देखिए ये गाय को क्या बचाना चाहेंगे, ये क्या नेशनल लॉ लाएंगे।
हैरानी दिलदार हुसैन बेग जैसे मुसलमानों से भी मिलकर होती है। पुरानी दिल्ली के एक मंदिर की गौशाला में हर हफ्ते गोसेवा करते हैं, दिन में 5 बार नमाज भी पढ़ते हैं और गो हत्या रोकने के लिए एक मुस्लिम गोरक्षा दल भी बना चुके हैं। दिलदार हुसैन बेग,
हमारी बात से इत्तेफाक तो एक फीसदी भी नहीं रखते थे, लेकिन धीरे 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 करके हमारी तादाद थोड़ी बढ़ने लगी है। अब लोग पढ़ने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। मेरी कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम है कि मेरी कम्युनिटी गौकशी में शामिल है, तो मुझे ही आगे बढ़ के उसको धोना पड़ेगा। मैं सिर्फ गौ हत्या के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि वो एक हमारे एक बड़े भाई, क्योंकि हमारे परिवार में जो हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम लोग छोटे भाई हैं, तो अगर हमारे किसी की आस्था को हमारे उसमें वो होता है तो हम लोग जो है उस चीज को त्याग कर सकते हैं।
इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि फिलहाल भारत में न सिर्फ गाय बल्कि गोरक्षक ट्रेंड करते दिख रहे हैं, लेकिन जिस बात पर ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है वो ये कि ये सब कितना सही है और कितना गलत। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है, राखी शर्मा के साथ।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पिछली हार को भुलाकर आज एक बार फिर मैदान पर उतर रही है। बैंगलोर का सामना आज उसके घरेलू मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन हैदराबाद सनराइजर्स से है। कोलकाता के खिलाफ विराट की टीम आईपीएल इतिहास के न्यूनतम स्कोर 49 रन पर ऑल आउट हो गई थी। पॉइंट्स टेबल में भी बैंगलोर की टीम सबसे कमजोर नजर आती है। अपने 7 मैचों में उसने सिर्फ 2 ही जीते हैं और वो सबसे निचले पायदान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उसका एकमात्र लक्ष्य टूर्नामेंट में बने रहने का होगा। बैंगलोर के 3-स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने जहां 4 मैचों में 154 रन बनाए हैं, वहीं क्रिस गेल ने 5 मैचों में 144 रन और एबी डिविलियर्स ने 4 मैचों में 145 रन बनाए हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस समय तीसरे स्थान पर है और उसके हिस्से में 7 मैचों में 4 जीत हैं। सनराइजर्स के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, आशीष नेहरा, राशिद खान, मोहम्मद सिराज और मोइजिस हेनरिक्स शानदार फॉर्म में हैं। आखिरी मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ 177 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए उन्होंने पुणे को परेशान कर दिया था। और अब बात टेनिस की। 15 महीने का बैन झेलने के बाद रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा कोर्ट पर वापसी कर रही हैं। स्टुटगार्ट ओपन टूर्नामेंट में उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है और प्रतिबंध के बाद उनकी पहली प्रतिद्वंदी विश्व नंबर 36 इटली की रोबर्टा विंची हैं। हालांकि वाइल्ड कार्ड के जरिए शारापोवा की वापसी को रोबर्टा जायज नहीं मानती।
Well, I think my personal opinion is I'm not agree about the wild card here.
मैं वाइल्ड कार्ड पर सहमत नहीं हूँ। मैं निजी तौर पर उनके खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने गलती की और उसकी सजा भी उन्हें मिली। मुझे लगता है वो खेल में वापसी कर सकती हैं बिना किसी मदद या वाइल्ड कार्ड के।
मार्च 2016 में शारापोवा ने स्वीकार किया था कि साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में उन्होंने एक प्रतिबंधित दवा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा था, लेकिन अपील में इसे कम कर 15 महीने कर दिया गया था। और वहीं भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर सुब्रत पॉल भी आज डोप टेस्ट परीक्षण में नाकाम रहने के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए। सुब्रत खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सैंपल बी का परीक्षण करवाएंगे। पॉल का बी सैंपल भी अगर पॉजिटिव पाया गया तो उन पर 4 साल का प्रतिबंध लग सकता है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और सभा के अंत में सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कल हुए नक्सली हमले के बाद आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह रायपुर पहुंचे। घायल जवानों से उन्होंने अस्पताल में मुलाकात की। 8 मई को नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक बुलाई। उत्तर कोरिया आज अपने सेना के 85वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर उत्तर कोरिया ने बड़े पैमाने पर फायरिंग ड्रिल की है। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में आज 4 लोगों को फांसी दे दी गई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तरी सीरिया में तुर्की के हवाई हमलों में कुर्द YPG पार्टी के 18 सदस्यों की मौत हो गई है। वहीं तुर्की की सेना का कहना है कि इराक में भी सीमा के पास हवाई हमले किए गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।